Now you are listening Gyanastali 99.6 FM. ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM. ये है गोंडा शहर की धड़कन। हर रोज गोधुली में हम ऐसे गोंडा की पर्सनैलिटी से आपको रूबरू कराते हैं, मिलाते हैं जो अपने क्षेत्र में कुछ खास काम कर रहे होते हैं। हम उनके क्षेत्र के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि उनका भी अपनी जीवन का एक संघर्ष होता है, एक सफर होता है। उस सफरनामे को जानने के लिए हम अपने गेस्ट से बात करते हैं। सो आज का शो भी बहुत ज्यादा आपके लिए नॉलेज लेके आया है, बहुत सारी जागरूकता वाली बातें होने वाली है, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं इस टॉक शो के माध्यम से। सो आइए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट कौन हैं। जी हाँ, तो हम बिना किसी देरी किए बता देते हैं कि आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है मिस्टर ब्रजेश पाठक, जो कि असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर गोंडा हैं। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं आपके अपने शो गोधुली में। थैंक यू। और जैसा कि अभी हमने बताया अपने श्रोताओं को कि आपकी फील्ड के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप हमारे श्रोताओं को बताइए, अपने बारे में संक्षिप्त विवरण दें कि आप कौन हैं, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपके माता पिता भाई बहन के बारे में, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में।
मैं ब्रजेश कुमार पाठक गोंडा जनपद का निवासी हूँ और मेरी पैदाइश मोतीगंज एक ग्रामीण अंचल पड़ता है वहीं पे हुई। हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे, माताजी गृहिणी थीं, हम चार भाई एक बहन थे। हम लोगों की शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में ही हुई। इसके बाद में पिताजी गोंडा जनपद में मुख्यालय पे काम करते थे, पोस्ट ऑफिस में। हम लोग यहाँ गोंडा जनपद में चले आए, अपने भाई बहनों के साथ यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगे। शिक्षा दीक्षा हम लोगों की कक्षा 8 तक की गांव में प्रवेश में हुई, फिर टामसर इंटर कॉलेज में हम लोग अपना इंटर तक की पढ़ाई पढ़ी। इंटर की पढ़ाई पढ़ने के बाद में हम लोग स्नातक किया महारानी लाल कुंवर इंटर महाविद्यालय बलरामपुर से। इसके बाद में हम लखनऊ विश्वविद्यालय से ला की डिग्री किए। इसके बाद हम सब पूरी शिक्षा खत्म होने के बाद में हम दीनदयाल शोध संस्थान, जो कि अपने गोंडा जनपद में गांधी पार्क के पास में स्थित है, यहाँ हम जुड़ गए। और वहीं पे एक सामाजिक संस्था होने के नाते सामाजिक क्षेत्र में काम करने की मुझे रुचि थी, वहीं अपना अपने जीवन कैरियर शुरू कर दिए।
ओके, तो ये तो बात रही अब तक के सफर के बारे में, अब इसको थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। आपने अपनी शिक्षा दीक्षा की बात की, आपने बताया कि आपके पिताजी डाक विभाग में थे
जी,
कार्यरत थे, उसकी वजह से आप लोग यहाँ शहर में आ गए और आपकी सभी की शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई
जी।
पिताजी ने कभी आपको एम्बिशन को लेके कुछ बताया कि आपको क्या करना है, आपको बड़े होके या आगे जाके क्या बनना है? उन्होंने बताया क्या कि आप ये पढ़ाई करिए कि आपके लिए बेहतर रहेगा, या आपने खुद ही चूज किया और बताया पिताजी को कि मैं ये करना चाहता हूँ, क्या रहा?
नहीं, पिताजी ने कभी ऐसा मोटिवेशन हमको नहीं दिया। उनका कहने का मतलब था जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो आप उस क्षेत्र में जाओ, ये है कि ऐसा काम करो जिसमें समाज में अपना मान और प्रतिष्ठा बना रहे, माता पिता का मान प्रतिष्ठा बना रहे। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे जो है समाज में हम लोगों की कोई वो उसकी गलत संदेश जाए। तो इसलिए हम लोग अपना क्षेत्र चुनते गए, अपनी एजुकेशन को बढ़ाते गए और बढ़ाते हुए अपनी एजुकेशन हमने जैसे ला की पढ़ाई की। ला की पढ़ाई करने के बाद में हमने प्रैक्टिस नहीं शुरू की। मैं एक दिन गया वहाँ दीनदयाल शोध संस्थान, इतफाक से मुझे जाना हुआ तो देखा कि वहाँ एक सामाजिक संस्था है, कि यहाँ अच्छे मतलब लोग काम करते हैं, दिल लगा के मन लगा के काम करते हैं। तो अगर मैं अपना काम करता प्रैक्टिस करता ला करने के बाद में, तो स्वयं में स्वावलंबन हो जाता, लेकिन दूसरों को स्वावलंबी नहीं बना सकता था। लेकिन मैंने देखा कि दीनदयाल शोध संस्थान ऐसी संस्था है कि जो अपने साथ अपना नहीं दूसरों को भी स्वावलंबन करने का काम कर रही है। जैसे हमारे माननीय श्रद्धेय नाना जी का एक ध्येय वाक्य है, हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए हैं, अपने वे हैं जो पीड़ित उपेक्षित हैं। तो मुझे ये ध्याय वाक्य दिखा और हम सोचे कि हमको इस ऐसे जगह जाना चाहिए, ऐसे संस्था में जाना चाहिए कि अपने साथ साथ दूसरों के भी विकास के बारे में हमको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरों का विकास हो रहा है तो अपना भी विकास होगा। इसलिए
तो ये आपकी इंस्पिरेशन थी वहाँ जाने की।
जी
जी बिल्कुल ठीक है। अभी हम एक बार फिर से आपके बचपन की तरफ लौटते हैं। सबका अपना बचपन बहुत प्रिय होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से बीता होता है। किसी का बहुत संघर्षों के साथ बीता होता है, किसी का माँ बाप की तरफ से इतनी बेफिक्री होती है कि बस खेलना कूदना और पढ़ना होता है। कोई गांव में रहने की वजह से, कम संसाधन की वजह से बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ पाते हैं। जो शहर में बच्चे होते हैं वो अच्छे से खेल नहीं पाते, उनके माँ बाप शायद खेलना ज़्यादा प्रेफर नहीं कराते, वो पढ़ाने का बोझ डालते हैं। आपका बचपन कैसे बीता, आपके माता पिता ने आपको कैसे ट्रीट किया?
अब हम चूंकि ग्रामीण परिवेश में थे, वहाँ संसाधन वास्तु में कमी थी, पैदल जाना होता था। हमारे गांव से विद्यालय 3 किलोमीटर था, हम लोग पैदल जाते थे, पढ़ते थे, पढ़ के लौट के घर आते थे। इसके बाद में घर का भी काम करना होता था और घर का काम करते हुए फिर पढ़ाई का भी काम करना होता था। उस समय इतने ज़्यादा संसाधन भी नहीं थे और हम लोगों को कुछ बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ने के समय कुछ दिक्कतें परेशानियाँ आती थी, कोई बताने वाला भी नहीं होता था कि हम लोग कैसे उसको सॉल्व करें। हम फिर जाते थे दूसरे दिन गुरु से, अपने जो हमारे गुरु विषय संबंधित गुरु होते थे उनसे पूछते थे, वो संतुष्ट हो पाते थे नहीं तो वो भी आगे बढ़ा देते थे। तो हम लोगों को वास्तव में दिक्कतें आ रही, जो वर्तमान परिवेश है कि यहाँ हर बच्चों को मिल जाता है कि नहीं जानकारी है तो दूसरे तीसरे संपर्क हो, हम लोग ऐसा नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हम लोगों के साथ बहुत आई कि बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों का नहीं क्लियर हो पाता था, जो अब बच्चों का हो जा रहा है। अभी क्या है, बच्चों जानकारी इनसे पूछ लिए उनसे पूरी जानकारी हो जाती है, लेकिन हम लोग गाँव में रहने के नाते ना हमारे गाँव के लोग इतना ज़्यादा अवेयर थे कि हम जो विशेष से जो हमको दिक्कतें आती थी वो हमको बताएं, जानकारी दें। तो ये सब दिक्कतें हम लोगों को गांव ग्रामीण परिवेश में होने के नाते बहुत सारी हैं।
जी, आपने बताया कि ग्रामीण परिवेश में होने के नाते कई सारी चीज़ों के रिसोर्सेज चूंकि आपके पास थे नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस की।
जी,
और ये बात फैक्ट है कि अगर इस तरह से कोई भी रहेगा ग्रामीण परिवेश में तो शायद इतने मौके नहीं मिल पाते जितने शहरों में होते हैं। माँ बाप का एक बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे आपको पढ़ाने में हो या आपको कोई वैल्यूज बनाने में हो, जैसे कहते हैं कि आदर्श संस्कार वो माँ बाप से ही पहले मिलते हैं।
जी, जी, जी।
आपको किस तरह से आपको आपके संस्कार मिले, पढ़ाई लिखाई में आपके फादर और आपकी मदर ने कितना आपको इनकरेज किया और किस तरह से हेल्प किया?
माँ बाप ने बहुत अच्छा हम लोगों का हेल्प किया, चूंकि कक्षा 8 तक की पढ़ाई हम लोग गाँव में पढ़े, जब देखा गया कि ये चूंकि पढ़ाई के संसाधन ठीक से थे नहीं, पिताजी हमारे गोंडा नगर में हेड पोस्ट ऑफिस में कार्यरत होने के नाते यहीं रहते थे, माताजी हमारी गांव में रहते थी, हम लोग जब अपना देखे कि कैरियर गांव में ठीक से नहीं उठ पाएगा तो पिताजी हम लोगों को गोंडा जनपद में लेके चले आए। फिर हम लोग यहां से अपनी पढ़ाई लिखाई अपना शुरू किए, पढ़ लिख करके हम लोग अपनी योग्यता को आगे बढ़ाते चले गए और आज हम लोग जो भी हैं अपने माता पिता के संस्कारों को मानते हैं और उनका दिया हुआ हम लोगों के पास बहुत कुछ है कि हाँ उनका जो संस्कार था, बात व्यवहार तौर तरीका था, समाज में भी उसका मान सम्मान हम लोगों का बना हुआ।
यानी कहीं ना कहीं पिताजी को यह आभास हो गया था कि अब अगर बच्चों को आगे पढ़ना है और आगे बढ़ना है
जी,
तो इस जगह से तो अब कहीं ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ पढ़ाई के लिए एटलीस्ट सारे रिसोर्सेज मिल जाए, एक अच्छा टीचर मिल जाए, एक अच्छा माहौल मिल जाए। और वही आपके पिताजी ने किया कि यहाँ गोंडा शहर के भीतर आप सभी भाई बहनों को लेके आए और आप सभी लोगों ने यहाँ से अपनी अपनी पढ़ाई पूरी की।
जी जी जी।
बाकी भाई बहन अभी क्या कर रहे हैं?
बाकी सब भाई बहन फिर जो हम लोग चले आए, तो जो हमारे बड़े वाले भाई साहब थे वो पहले हम लोगों से, चूंकि हमसे बड़े थे, वो पहले ही आ गए थे।
जी,
चूंकि कक्षा 8 के बाद में आगे की पढ़ाई का वहाँ कोई सुविधा नहीं था तो आप यह गोंडा जनपद के मुख्यालय पर ही राजकीय फखरुद्दीन इंटर कॉलेज से उन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की।
जी,
दूसरे नंबर के हम थे, हम भी चले आए गोंडा जनपद में और जैसे जैसे कक्षा 8 की पढ़ाई बच्चों हमारे भाई बहनों ने कंप्लीट किया, उनको नगर में ही, गोंडा नगर में ही आकर के अपनी आगे की शिक्षा करनी पड़ी, तो सारे लोग यहीं चले आए, फिर अपनी यहीं से एजुकेशन को शुरू किया।
ठीक है, इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि LU से भी पढ़ाई की।
जी,
लखनऊ विश्वविद्यालय।
जी जी।
गोंडा के एक ग्रामीण परिवेश के आप रहने वाले।
जी,
फिर गोंडा शहर में आप आए, गोंडा शहर से आप गोंडा से बाहर निकले, लखनऊ में गए।
जी जी।
माहौल में बहुत चेंजेस आते हैं।
जी 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 जी।
बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बहुत होते हैं।
जी जी।
माँ बाप की फिक्र बढ़ जाती है कि बच्चा बाहर तो जा रहा पढ़ने के लिए लेकिन कहीं बुरी संगत में ना आ जाए।
जी जी।
कहीं खेलने कूदने में ज्यादा ही ना इन्वॉल्व हो जाए।
जी जी।
तो माँ बाप का कैसा बाद में आप पे विश्वास रहा, ट्रस्ट रहा, आपने उसको कैसे कायम किया और आपका वहाँ पढ़ने का मैनेजमेंट क्या था, कैसे आप टाइम टेबल बनाते थे, किस तरह से आपने पढ़ाई की?
अब हम यहाँ माता पिता जी ने एडमिशन जैसे हमारा ला में वहाँ करवा दिया, हम लखनऊ गए अपना लेकर के वहाँ पढ़ने लगे, लेकिन माता पिता जी का यही कहना था कि जिस उद्देश्य को लेकर के आप गए हो उस उद्देश्य से पे ही रहना, उस पर भटकना नहीं, चूँकि आप छोटे शहरों से जा करके बड़े शहरों में जाना, फिर बच्चे क्या होता है कि अब वहाँ का जो आबो हवा देखते हैं उसमें भागने लगते हैं, इससे भटकना नहीं, अपने उद्देश्य की पूर्ति करना। उद्देश्य से भटकोगे तो अपने जीवन में भी सफलता नहीं पा सकोगे। तो हम लोग माता पिता बताए हुए बातों को अपने मन में रखे, ध्यान में रखे, अपनी शिक्षा पूरा किया। पूरा करने के बाद में हम लोग वापस फिर गोंडा जनपद में आ गए। अपना ये प्रैक्टिस शुरू करना चाहते थे, लेकिन मन में समाज सेवा थी, इसलिए उसको छोड़ करके समाज सेवा में।
जी जी जी, ये बात तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन और किया कि वहाँ पे आपने अपने को मैनेज कैसे किया, यानी टाइम टेबल क्या था आपका, आप कैसे पढ़ते थे? क्योंकि वहाँ पे देखिए बहुत सारे दोस्त यार बन जाते हैं नए, अरे चलो फिल्म देखने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, ठीक है थोड़ा बहुत चलता है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन एक दायरा होता है।
जी जी,
क्योंकि जैसा कि आपके पिताजी ने आपको नसीहत दी थी कि देखो जिस एम्बिशन को लेके आप जा रहे हो
जी जी,
उसका आपको जरूर ध्यान देना है।
जी जी,
तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? क्या आपका कोई पढ़ने का कोई टाइम टेबल था? टाइम टेबल में था तो आप उसको कैसे करते थे? मोटिवेशन कहाँ से आपको मिलता था वहाँ पे, ये आप बताएं।
हम पढ़ते थे तो वहीं पे हमारे एक साथ में रहने वाले थे, यहाँ बाराबंकी जनपद के थे, एक गुरु जी थे, उनके शरण में हम गए, उनसे बातचीत किया, वो हमसे हमारे बातों से खुश हुए। तो उन्हीं के एक कमरा था, उन्हीं के कमरे में रह के पढ़ते थे, और पढ़ने के दौरान हम लोग अपनी शिक्षा दीक्षा पे ही ध्यान देते थे, भोजन बना के करना, अपनी पढ़ाई करना, और इसके बाद में इधर उधर बच्चों के साथ न घूमना, वो नसीहत दिया करते थे। माता पिताजी इतने, हम लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, संसाधन भी नहीं थे कि हम अन्य बच्चों के साथ जा करके पिक्चर देखना या किधर उधर कहीं घूमना, मार्केटिंग करना, वो भी असंभव नहीं था हम लोगों के पास में। तो जो कम संसाधन था, पैसे की भी कमी हुआ करती थी, बस उद्देश्य अपना एक था कि हमको पढ़ करके आगे बढ़ना है, इस उद्देश्य को मन में रख करके हम लोग अपना पढ़ाई पूरा किए वहाँ पे।
जी, जैसा कि अभी आपने बताया, यानी आपकी बातों से ये जाहिर होता है कि अगर आपकी लाइफ में आप किसी को एक गुरु मान लेते हो
जी,
या एक मेंटर ले लेते हो
जी,
तो वो आपको जरूर हेल्प करता है। और आपको देखिए, एक बाराबंकी के रहने वाले गुरुजी मिले
जी जी,
आप उनके कमरे में जाके उनकी कहीं ना कहीं हेल्प लेते थे, पढ़ते थे
जी जी,
और वो भी शायद आपको लगातार नसीहत करते थे।
बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि मुझे लगता है ब्रजेश जी कि जब भी हम जिंदगी में कुछ गलत कर रहे होते हैं
जी जी,
और हमारे पास कोई एक ऐसा अलार्म हो जो हमको बार बार कहे कि नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो,
बिल्कुल,
या तुम्हें इधर जाना है
जी जी,
तो शायद फिर चांसेस होते हैं कि हम अपने बेहतर डायरेक्शन में, जो हमारी चाहत है जिधर जाने की, उधर हम जाएंगे। और आपने ऐसा किया भी, आपने गुरु बनाया और उन्होंने हेल्प किया,
हेल्प किया,
ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद तब तक क्या ये क्लियर था कि आपको एनजीओ में काम करना है, समाज सेवा करना है, या कोई और एम्बिशन था?
एम्बिशन था और था एम्बिशन, लेकिन हम समाज सेवा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ हम गए देखे, हम मन में यही था, हम शुरू से बचपन से यही था कि क्या कहते हैं, खुद कमाओ खुद खाओ, उससे अच्छा है कि ऐसा काम करो कि जैसे अपने जो अपना काम हो करने से चार लोग उससे लाभान्वित हों, ऐसा काम करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का एक वो होता नहीं जिसे बोलते हैं कि वो मन में एक धारणा थी कि हम अब ऐसा नहीं काम करेंगे कि हम अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे, अपने परिवार को पालेंगे, ये मन में मेरी धारणा बचपन से भी नहीं थी। मेरा ये उद्देश्य होता था कि हम ऐसा कोई काम करें जिससे जो समाज लाभान्वित हो। तो मैं वहाँ गया, देखा वहाँ का माहौल, देखा कि हाँ मेरे करने से वास्तव में समाज के लोग लाभान्वित होंगे।
जी, ये तो आपने देखा
जी,
लेकिन क्या आपके पिताजी, आपकी माताजी ने किसी ने टोका नहीं कि नहीं तुम पैसा नहीं कमाना चाह रहे हो, ये आप क्या काम कर रहे हो?
कभी नहीं, कोई नहीं टोका, क्योंकि मेरा शुरू से यही लक्ष्य था, गांव में भी मैं रहता था, मेरा यही लक्ष्य हुआ करता था कि गांव में जो बच्चे थे, जो हमसे 2, 3, 4, 5 के बच्चे हुआ करते थे, हमको इकट्ठा करके उनको शिक्षा देने का काम करते थे, ये मेरा शुरू से उद्देश्य हुआ करता था। ये बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते थे गांव के, तो हम क्या करते थे, उनका बैग लेकर के हम खुद उनको विद्यालय जा करके उनको शिक्षा दीक्षा ग्रहण करवाते थे, मेरा एक हेल्पिंग नेचर बना कर। तो यही चीज़ हमने जो है अपना समाज सेवा शुरू की, निश्चित किया कि अपने जीवन में समाज सेवा करेंगे, और जो मिलेगा, ऐसा नहीं कि यहां से कुछ थोड़ा बहुत जो मिलता है उससे अपने पारिवारिक खर्चे चलते हैं, बाकी समाज का काम तो हो ही रहा है।
बिल्कुल,
समाज अगर लाभान्वित है तो हमें लगता है कि हम लाभान्वित हैं,
बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं
जी जी,
और आपका बचपन में ही छोटे बच्चों को, यानी आप सीनियर जब होते तो अपने जूनियर्स को पढ़ाना, उनको विद्यालय तक ले जाना, कहीं ना कहीं ये डेडिकेशन था कि एक बच्चा पढ़ ले, लिख ले और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और इतनी छोटी सी उम्र में अगर आप ऐसा काम करते थे तो आपकी मैच्योरिटी का अंदाजा, आपके समाज सेवा के प्रति जो झुकाव था उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ अब हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला है, तो हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा ब्रजेश पाठक जी के साथ में। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
गोंडा शहर की धड़कन।
हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट आरजे मोनिका लेकर आती है ज्ञान असली बीट, जहां होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें, लाइफस्टाइल एंड ग्रूमिंग, स्पोकन इंग्लिश की बातें, किस्सा गोई और किताबों पर बातें, शेर व शायरी जिसमें कुछ अपनी कहेंगे कुछ आपकी सुनेंगे और जिंदगी के अनसुने सलीके की बातें करेंगे। तो सुनना न भूलिए रोजाना दोपहर 3:30 बजे। सो लर्न ग्रो एंड ग्लो विद आरजे मोनिका।
ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
मैं पढ़कर अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ।
सारे सपने होते हैं साकार क्वालिटी एजुकेशन के साथ सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, जहाँ एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स के कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम किया जाता है, जहाँ है वेल इक्विप्ड लैब्स, प्रॉपर लाइब्रेरी और ग्रीन कैंपस। साथ ही साथ आपको मिलता है वोकेशनल कोर्सेज में योगा, कंप्यूटर, म्यूजिक, ब्यूटिशियन, स्टिचिंग, टेलरिंग और रेडियो जॉकी, जो आपके बच्चे को देता है एक नई उड़ान। साथ ही साथ NSS, स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज की रेगुलर क्लासेस। गोंडा जनपद का पहला गर्ल्स कॉलेज सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9450 75 74 83, 9450 75 74 83।
ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
बड़ी सुनी सुनी है। जिंदगी ये जिंदगी मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी बड़ी सोनी सोनी है।
ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
गोंडा शहर की धड़कन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे बीच में आज स्पेशल गेस्ट के रूप में मौजूद है मिस्टर ब्रजेश पाठक जी, जो कि असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर गोंडा है, यानी जिन्हें हम APO की पोस्ट से भी जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये APO की पोस्ट होती क्या है और इसके कार्य क्या होते हैं।
ये असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पोस्ट होती है हम लोगों की। इनका काम है कि जो क्षेत्र में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड हो रहे हैं, चल रहे हैं, इनका सुपरविजन करना। जैसे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं तो उन पे कच्चा माल की उपलब्धता है कि नहीं है, प्रशिक्षण की क्वालिटी कैसी है, प्रशिक्षार्थी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं तो कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा ट्रेड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इन सब जो दिक्कतें आती हैं इनको दूर करना और इनका सुपरविजन करना, ये मेरा काम होता है।
यानी आप इंस्पेक्ट भी करते हैं?
इंस्पेक्ट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, दोनों करते हैं।
चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जरा फिर से थोड़ा सा पीछे हम आते हैं और आपके दीनदयाल शोध शिक्षण संस्थान से जुड़ने का टाइम जानना चाहेंगे कि आपने किस सन में आपने इसको ज्वाइन किया और पहली क्या पोस्ट थी आपकी?
हम 16 दिसंबर 2000 को जन शिक्षण संस्थान गोंडा में APO के पद पे ही कार्य शुरू किए थे। तब से अभी वर्तमान में ही APO के पद पे कार्य कर रहे हैं। जो मुझे दायित्व मिला हो इसका हम निर्वहन कर रहे हैं
जी। तो अभी तो आपने बताया कि ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसके लिए अभी आप काम करते हैं, APO की पोस्ट आपकी है
जी, जी।
क्या आपने जब ज्वाइन किया था तब भी आपका काम यही था, वोकेशनल ट्रेनिंग्स का ही इंस्पेक्ट आप करते थे, सुपरविजन करते थे?
जी जी, हम यही शुरू से मेरा काम था, इसी को इंसिस्ट करते थे। और हमारे नीचे भी होते थे फील्ड एसोसिएट होते थे, जो कि ये इनकी नियुक्ति ब्लॉक स्तरीय होती है। ये ब्लॉकों पे अपना उपकेंद्र, प्रशिक्षण उपकेंद्र बनाते हैं, सब सेंटर बनाते हैं। वहीं पर स्थानीय स्तर के जो अनएम्प्लॉय मेल फीमेल होते हैं उनको, उनका इंटरव्यू लेकर के फिर उनके ऐच्छिक विषय में, मतलब ट्रेड व्यवसाय में, उनको प्रशिक्षण देते हैं। फिर जा कर के उनके बीच में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, उनको दूर करना, उनके साथ खड़े रहना, ये हम लोगों का काम होता है।
तो ब्रजेश जी, आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की है
जी,
तो वोकेशनल ट्रेनिंग तो कौशल विकास सेंटर्स पे भी चलती है
जी, जी।
तो क्या आप कौशल विकास सेंटर्स के साथ काम करते हैं या आपकी ये अलग बॉडी है?
मेरी ये अलग बॉडी है। पहले हम लोगों की हुआ करता था, ये जन शिक्षण संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से हुआ करता था, जो कि लिटरेसी लिंक से जुड़ा होता था। हम लोग इसके वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ लिटरेसी कार्यक्रम भी किया करते थे, जो क्या नाम है, ये न्यू लिटरेड नॉन लिटरेड जो मेल फीमेल होते थे उनको एजुकेट पढ़ाने का भी काम हुआ करता था। चूंकि अब चेंज हो गया है, हम लोग कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अब मिलकर के काम कर रहे हैं, ये हम लोगों का अलग है।
ये आपका अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सपोर्टिंग बॉडी के तौर पे उनके काम कर रहे हैं
जी, जी, जी।
ठीक है, पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि वोकेशनल ट्रेनिंग होता क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग से हमारे श्रोता क्या समझे?
वोकेशनल ट्रेनिंग एक व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है, कि व्यावसायिक प्रशिक्षण है। जैसे अपना बालक जो भी मेल फीमेल है, अनएम्प्लॉय है, उसको जॉब नहीं मिल रही है। चूंकि वर्तमान समय में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल विषय है, लोग पढ़ लिख करके जॉब के चक्कर में रोजगार दफ्तर का चक्कर काटा करते हैं अनएम्प्लॉय के लिए, कि वो गए अपना इन्होंने एनरोलमेंट कराया, उनको जॉब नहीं मिल रही है। यदि वही यूथ कोई अपना एक निश्चित व्यवसाय चुन लें कि हमें फला व्यवसाय में प्रशिक्षण लेना है, प्रशिक्षण लेकर के हमको अपने पैर पे खड़ा होना है, स्वावलंबी बनना है, तो वास्तव में वो स्वावलंबी बन सकता है। और यदि वो पढ़ लिख करके उन्होंने इंटर कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, वो रोजगार के लिए दौड़ भाग करता रहता है। लेकिन अगर वास्तव में वो वोकेशनल ट्रेनिंग उसने, कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण उसने प्राप्त कर लिया, तो उसको जल्द ही अपना काम मिल जाएगा, स्वयं का काम मिलेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, साथ साथ में 10 लोगों को और जोड़ लेगा।
ये बात तो आपकी समझ में आई कि व्यावसायिक शिक्षा आप प्रशिक्षण देते हैं और वो बहुत जरूरी है। देखिए लाइफ में आप कितना भी पढ़ ले, कमाना है ही है
जी जी।
और कहीं ना कहीं वही शायद समाज के लिए हम काम भी कर रहे होते हैं, क्योंकि समाज एक दूसरे से जुड़ा होता है। लेकिन हमें आप ये बताइए, जैसे कि कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें ट्रेनिंग्स तो दे दी जाती है
जी जी जी।
उसके बाद उनको ट्रैक नहीं किया जाता या उनसे कॉन्टैक्ट नहीं रखा जाता, तो बच्चे कहीं ना कहीं आगे के लिए, क्योंकि आपने बस सिखाया है, आपने सिर्फ लेक्चर्स देके बताया है
जी जी,
या थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कराया, लेकिन एक होता है कि फील्ड में जाके बच्चों को हेल्प करना
जी जी जी,
उनको लोगों से मिलवाना, उनको फील्ड दिखाना, उनको कस्टमर्स की नीड क्या होती है वो बताना
जी,
क्या उसमें भी आप हेल्प करते हैं?
बिल्कुल, हम हेल्प करते हैं सर। जैसे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, हम लोगों की ट्रेनिंग की जो होती है टाइमिंग होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कौशल विकास मंत्रालय निश्चित करती है कि ये ट्रेनिंग इतने समय की होगी। तो हम लोग उसमें जो इनका सिलेबस पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम में ये हम लोगों का डिवाइड हो जाता है कि इतने महीमा जो है मंथ आपका प्रशिक्षण चलेगा, इसके बाद में मार्केटिंग की क्या व्यवस्था होगी, इन रोजगार सृजित करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, इन सब की जरूरत पड़ती है। हम लोग ऊपर भी एक कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, वो भी जाया करते हैं बराबर, वो भी सुपरविजन किया करते हैं कि बच्चे क्या करना, वास्तव में बच्चा क्या करना चाहता है, ये अपना स्वयं का रोजगार करना चाहता है या ये किसी दुकान से, बच्चा अगर नहीं करना चाहे किसी दुकान से इसको जोड़ दिया जाए ताकि ये वहां से इनकम अपने आप को करना लगे। तो बेज और सेल्फ दोनों प्रकार के रोजगार को हम सृजित करते हैं। जो बच्चा स्वयं से करना चाहता है, उसके पास धन की धन है या नहीं है, पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो इसको रोजगार करना है तो कैसे कराया जाए, तो हम लोग से जिला उद्योग केंद्र हुआ, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड हुआ, या बैंक से भी मुद्रा लोन हुआ, इन सब से भी बातचीत करके उनके उनके रोजगार को सृजित करने के लिए उनका पूरा सहयोग करते हैं और प्रयास यही करते हैं ये अपना रोजगार सृजित करें और इनके द्वारा जो उत्पादित सामान है, जो प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए पहले हम लोग चिंतन करते हैं मार्केटिंग की व्यवस्था कैसे हो। तो जो प्रोडक्ट तैयार होता है मार्केटिंग की व्यवस्था भी करवाते हैं, मार्केटिंग का भी काम हम लोग करवाते रहते हैं। फिर वो जब पकड़ लेते हैं कि अपने उनके जो उत्पाद तैयार हुए, प्रोडक्ट तैयार हुए, मार्केटिंग अच्छे तरीके से हो रही है, फिर वो लोग अपना लाइन लेंथ पकड़ लेते हैं, चार पैसा कमाते हैं, हम लोग भी उस पर खुश रहते हैं देख के।
ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोर्स के साथ साथ मार्केटिंग पे काम होता है। बंदा अगर खुद नहीं कोई पैसे लगा आपके, किसी के अंडर में करना चाहता है तो आप उस तरह से भी उसकी हेल्प करते हैं, कोई खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो आप उसमें भी उसकी हेल्प करते हैं
जी जी।
ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप ये बताइए कि आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ चल रहे हैं गोंडा में और कितने बैचेज हैं, एक बैच में कितने बच्चे होते हैं और क्या क्या ट्रेड्स हैं मेन, तो इस पर आप फोकस करिए कि ट्रेड्स कौन कौन से हैं।
हमारे यहाँ सर अभी जो अभी आया हुआ है, अभी एक्शन प्लान अप्रूव नहीं हुआ है, 2022-23 का हुआ है, उसमें से अभी हम लोग एक्शन करके दिए हैं कौशल विकास मंत्रालय को। तो अभी जो हमारे आनगोइंग ट्रेनिंगें हैं वो हमारे 45 बैचेस हैं, एक बैच में 20 जो है बेनिफिशियरीज होते हैं हमारे। तो गोंडा जनपद के 16 विकास खंड में प्रशिक्षण तो अभी नहीं चल पाते, कुछ में प्रशिक्षण चलते हैं, कुछ में एक्टिविटीज चलती हैं, तो 10 ब्लॉकों में हमारे प्रशिक्षण संचालित हैं, इसमें प्रशिक्षण चल रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल का हुआ, इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन का हुआ, ऑटो टू व्हीलर रिपेयरिंग का हुआ, हैंड एम्ब्रॉयडरी का हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेलर का हुआ, ये सब प्रशिक्षण अलग अलग जगहों पे, कंप्यूटर ऑपरेटर का हुआ ट्रेनिंग, प्लम्बरिंग का ट्रेनिंग हुआ, अलग अलग विकास खंडों में अलग अलग जगह संचालित हैं, जहाँ देखा जा रहा है कि वो वास्तव में प्रशिक्षण लेंगे, लेने के बाद में रोजगार से जुड़ जाएंगे, उनमें उत्सुकता देखी जाती है, जो हमारे लाभार्थी होते हैं, बेनिफिशियरीज होते हैं, कि ये प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, इनको रोजगार मिल जाएगा। हम लोग वहीं जा करके उनको अपने जगह उनके हिसाब से हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, ये नहीं कि हम कोई 10 किलोमीटर से प्रशिक्षार्थी को बुला करके, नहीं, हम देखते हैं कि इस जगह पे या लोगों को प्रशिक्षण करा दिया जाएगा, इनको रोजगार मिल जाएगा, तो हम लोग वहीं स्थानीय स्तर पर ही संसाधन उपलब्ध कराते हैं और वहीं प्रशिक्षण दिलाते हैं कि हमारे बेनिफिशियरीज को दिक्कत ना हो, संसाधन हम इकट्ठा कराएंगे, प्रशिक्षण देंगे, उनको रोजगार में जोड़ेंगे, ये हम लोगों का काम होता है।
यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आप जो भी बेनिफिशरीज होते हैं
जी,
उनके फायदे के लिए उनके ही एरियाज में जाके सारे रिसोर्सेज।
ये हमारे सर जो ट्रेनिंग होती है ये मोबाइल ट्रेनिंग होती है, मेरी मोबाइल ट्रेनिंग है,
यानी मूवमेंट करते
हैं, मूवमेंट करती है, कोई फिक्स वेन्यू नहीं होती है कि इस वेन्यू पे हमको बस यही प्रशिक्षण चलाना, नहीं, हमें बेनिफिशियरीज दिख गए स्थानीय स्तर पे, हम ये भी चीज ऑब्जर्व करते रहते हैं कि स्थानीय स्तर पे हमको कच्चा माल दिखा, उसकी उपलब्धता दिखी, कि उस कच्चे माल का उपयोग करके हमारे बेनिफिशरीज लाभान्वित होगा, तो हम लोग वो भी ट्रेनिंग चला देते हैं।
ठीक है, लेकिन अभी आपने बताया कि जैसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग है
जी,
इलेक्ट्रिकल की है
जी, जी
प्लम्बरिंग की है
जी जी,
तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है
जी जी जी,
और इसमें इक्विपमेंट्स भी लगते हैं
जी जी,
तो क्या इक्विपमेंट्स भी आप लोग उपलब्ध कराते हैं ट्रेनिंग के लिए?
बिल्कुल सर, जो इक्विपमेंट भी हम उपलब्ध कराते हैं, इनको रॉ मटेरियल भी हम देते हैं, जो रॉ मटेरियल लगता है हम लोग, जो सिलेबस जो अकॉर्डिंग जो होता है पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो कच्चा माल लगता है ये लोग उपलब्ध कराते हैं। हाँ सर, इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर ट्रेनिंग हुए, इलेक्ट्रिकल की व्यवस्था नहीं जहाँ पे हो पाई या हमारे लैब नहीं हो पाए, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों की, लेकिन बच्चे वास्तव में अगर अच्छी ट्रेनिंग उनको मिल रही तो 2-4-5 किलोमीटर वो आ जाते, लेकिन प्रयास यही रहता है कि जैसे बभन जोत ब्लॉक हमारा हुआ और उनको प्रशिक्षण हम गोंडा में देंगे तो बच्चे हमारे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। उनको हम स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग चलाने से पूर्व हम लोग ये देखते हैं कि स्थानीय स्तर पे हमारा अगर कंप्यूटर प्रशिक्षण चला तो कोई अच्छा लैब मिल जाए, हम उनको हायर कर लेते हैं, और जो रिसोर्स पर्सन होता है उनका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मानदेय होती है उस मानदेय को उनको देते हैं, सीधे उनके खाते में देते हैं, वहीं हायर करते हैं, वहीं उनको प्रशिक्षण देते हैं, कच्चा माल देते हैं, और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में कोई कमी ना आए इसी हम लोग बराबर प्रयास करते हैं कि ये अच्छे से सीख लें हमारे यहाँ से।
ओके, मान लीजिए अभी बहुत सारे श्रोतागण सुन रहे हैं और वो कोई इसमें से ऐसे हो जो हो आपकी बात सुनने के बाद कि वो भी आपके इस योजना से जुड़े और लाभान्वित हो
जी, जी।
तो पहले तो हमारे उन श्रोताओं को आप क्राइटेरिया बता दीजिए कि क्राइटेरिया क्या है, कैसे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वो इससे जुड़ सकते हैं।
हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण संचालित होता है, जब हमारे यहाँ ये एक्शन प्लान अप्रूव होकर के आ जाता है, अप्रूव होने के बाद में ये जो जन शिक्षण संस्थान कार्यालय हमारा गांधी पार्क में है कार्यालय, यहाँ पर के यहाँ पर वो आ सकते हैं, आवेदन फॉर्म लें, और जिस विषय में उनको इंटरेस्ट हो, प्रशिक्षण लेने के इंटरेस्ट हो, वो अपना आवेदन भर करके जमा कर दें, और फिर देखा जाता है कि ये वास्तव में कहाँ कौन सी जगह नज़दीक होगी, सब सेंटर नज़दीक होंगे, जैसे वो इलेक्ट्रिकल का उनको प्रशिक्षण लेना है, कंप्यूटर का लेना है, ऑटो टू व्हीलर का लेना है, जिस विषय में वो इच्छुक विषय उनको सेलेक्ट उन्होंने, हम लोग उनके इच्छा अनुसार वहाँ पे उनका सिलेक्शन करके उनको भेज देते हैं, आप वो स्थानीय स्तर पे उनको प्रशिक्षण मिलना शुरू हो जाता है।
ओके, ये बात रही क्राइटेरिया की, इसमें क्या कोई एजुकेशनल कुछ क्राइटेरिया है कि कितना पास होना ज़रूरी है, और आय को लेके भी क्या कोई क्राइटेरिया है क्या?
ऐसा कुछ नहीं है इसमें, अब पहले तो इलिटरेट पर्सन को रखा जाता था, लेकिन अब इधर जो कौशल विकास मंत्रालय ने जो है थोड़ा चेंज कर दिया, फिफ्थ लेवल तक जो हैं थोड़ा न्यू लिटरेट पर्सन हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं को जो है हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कंप्यूटर में। हाँ, हाई स्कूल स्टैंडर्ड उन्होंने किया है, बाकी फिफ्थ लेवल से स्टार्ट किया है इन्होंने।
फिफ्थ लेवल से बाकी के लिए कंप्यूटर के लिए कम से कम 10th आपके पास होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज मुझे ये जानना है, जैसे कि आपने कहा फिक्स होता है एक बैच में 20 बच्चे होते हैं।
जी जी जी।
समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे शौक शौक में आके करा तो लेते हैं
जी जी,
लेकिन उनका मन नहीं होता है, इसकी वजह से वो सीट खराब चली जाती है या कह सकते हैं रिजर्व हो जाती है, जो सही में कोई एक कायदे का इंसान आके जो डिजर्व करता है
जी जी
वो कर सकता है। तो इसके लिए भी क्या पहले कोई साक्षात्कार इंटरव्यू लेते हैं, जाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा सीरियस है, कोर्स पूरा करेगा या नहीं करेगा?
यस बिल्कुल सर, ये है 15 हम लोग क्या करते हैं कि एडमिशन लेने के पूर्व हम लोग वहाँ पे प्रचार प्रसार करते हैं पंपलेट के द्वारा, या एक सर्वे भी हम लोग कराते हैं, सर्वे भी होता है कि हम लोग डोर टू डोर जाकर के सर्वे कराते हैं, उसमें ये निकल के रखा कि फला व्यवसाय में हम प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, वो आकर के हमारे आवेदन करते हैं, लेते हैं, फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, उनका एडमिशन लेते हैं, फिर 15 दिन तक हम लोग उनको एक बैच 20 का जब बन जाता है फिर 15 ऑब्जर्व करते हैं कि ये बच्चा आएगा या नहीं आएगा, अगर उसकी उपस्थिति ठीक नहीं रही तो हम लोग वेटिंग में रखते हैं। सब 20 का बैच होता है, 25-30 का एडमिशन मतलब वो इंटरव्यू लेते हैं, 4-5 हम लोग उनको रखते हैं वेटिंग में रखते हैं, उन बच्चों को हटा करके उन बच्चों को अपने में सेलेक्ट कर देते हैं, बाकी उनका हम लोग हटा देते हैं कि जो हमारा बैच चल रहा हो जितने भी बेनिफिशियरी प्रशिक्षण लें वो लाभान्वित हों।
ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंसर्न होता है, देखा जाता है कि भाई लिमिटेड सीट्स हैं तो उसमें ऐसे बच्चे ज़्यादा ना आ जाए जो अभी सीखने के लिए इंटरेस्टेड ना हो, और ऐसे बच्चों की सीट ना चली जाए जो सच में इंटरेस्टेड रहें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इन चीज़ों को ध्यान देते हैं। आपसे बातचीत करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि आपकी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, फीमेल्स के लिए स्पेशली कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और अभी करंट में आपके संस्था कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं जिसमें हमारे श्रोतागण भी अगर चाहें सुने तो वो जान सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला, तो अपने श्रोताओं से हम कहेंगे कि बहुत ही ज़रूरी जो जानकारियाँ हैं वो भी हम इस ब्रेक के बाद सर से लेते रहेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी जहन में हैं, जो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट तौर पर फायदा पहुंचाने वाली, इसलिए कहीं मत जाइएगा। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
गोंडा शहर की धड़कन।
नहीं सुनेंगे अब बांझपन का ताना, अब तो बस गिफ्ट IBF है जाना। जी हाँ, निसंतान दंपतियों के घर भी अब गूंजेगी खिलकारी। गोंडा में मंडल का एकमात्र विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित IBF सेंटर, जो देता है आपके आंगन में खुशियों की सौगात। निशुल्क परामर्श के लिए आज ही संपर्क करें 1800 120 60 60 60। गिफ्ट IBF, गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा।
ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
गोंडा शहर की धड़कन।
आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने RJ अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने RJ अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
ज्ञानस्थली 89.6 FM,
89.6 FM,
गोंडा शहर की धड़कन।
तस्वीर तेरी आज दे तस्वीर तेरी आज देखी है जो तस्वीर तेरी याद आया है न जाने क्या क्या याद आया है न जाने क्या क्या लुट गए अपने खजाने
ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ में आज स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं मिस्टर ब्रजेश पाठक जी जो कि असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं एपीओ के पद पे कार्यरत हैं गोंडा में। तो अभी हम आपसे ब्रेक पे जाने से पहले आपसे हमने जाना आपकी योजनाओं के बारे में। एक बात आती है जो गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात। यानी उन प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करने की बात चली जो जहाँ की पहचान हुआ करता था, जहाँ पे रॉ मटेरियल जहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक देते हैं, ये हर जगह काम आता है, बच्चा कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन इससे जोड़ के भी उन लोकल एरियाज में जहाँ पे वो लोकल चीज़ें मिल जाती है, जहाँ पे प्रोड्यूस की जा सकती है इजीली, ऐसी भी कोई आप लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत ऐसी कोई ट्रेनिंग्स देते हैं?
बिल्कुल सर देते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जो स्थानीय स्तर पे उपलब्ध जो कच्चा माल है, अभी ये गोंडा जनपद में पटसन, आपने सुना पटसन होता है ना
जी,
पटसन से जो साइकिल में लगाने वाला फुलरा पहले होता था
जी,
ये नवाबगंज क्षेत्र में हम लोग प्रशिक्षण चलाए थे, तो जो फुलरा बनता है साइकिल में लगाया जाता है या डेकोरेटिव आइटम किए जाते हैं, तो उनसे हम लोग उनको उनका प्रशिक्षण चलवाए थे। बहुत ही इफेक्टिव प्रशिक्षण था और काफ़ी लोग उसको, जो इलिटरेट पर्सन थे उस पर इंटरेस्ट भी रखे, उसमें कोई करना भी नहीं था, और वो फुलरा बना करके उसकी मार्केटिंग, वीकली मार्केट लगती थी, वहीं ले जा करके उसकी मार्केटिंग भी हो जाती थी। फैजाबाद में भी उसकी मार्केटिंग होती थी, गोंडा में भी मार्केटिंग होती थी, कई जगह उसकी मार्केटिंग होती थी। तो हम पटसन से फुलरा बनाने का जो काम करते थे, ये हमारा बहुत ही हाईलाइट हुआ। कम लागत में अच्छा दाम मिलता था, और प्रयास यही करते थे कि जो स्थानीय स्तर पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पत्ता, तेंदुए का पत्ता वगैरह हुआ, इससे भी हम जो है दोना पत्तल बनाने का भी काम करते रहते हैं
जी,
ये भी प्रशिक्षण हम लोग चलवाते रहते हैं। तो प्रयास यही रहता है जो स्थानीय स्तर पे जो कच्चा माल की उपलब्धता है उसका अगर प्रशिक्षण दे देंगे तो उससे लोग लाभान्वित हो जाएंगे, उनकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था हो जाएगी, उनको आय जल्दी शुरू हो जाती है।
ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोकल के जो रॉ मटेरियल्स होती हैं उसमें भी आप प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं। एक चीज होता है एनवायरनमेंट
जी, जी
आप हम सभी लोग पता है कि एनवायरनमेंट की क्या अहमियत हमारी जिंदगी में
जी, जी जी
तो कहीं ना कहीं जैसे पॉलीथीन का इस्तेमाल है उसको कहा तो जाता है हटा दो,
बिल्कुल, बिल्कुल।
लेकिन हम सभी को पता है कि अगर कोई चीज हटाई जा रही है तो उसके बदले कोई चीज लाई जाए, जैसे कि जूट के थैले की बात चलती है
जी, 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 जी।
डिस्पोजल की जगह पत्तल और दोने की बात चलती
जी, जी, जी।
इससे क्या होता है कि पत्तों का यूटिलाइजमेंट भी हो जाता है
जी, जी।
और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ का सेफ भी बना रहता है
जी।
इन चीजों को लेके भी क्या आप जागरूक करते हैं, क्या इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं?
बिल्कुल सर, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जैसे हमारे यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेलर का प्रशिक्षण चलता है महिलाओं में, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के बाद में जो उसका कटिंग कपड़ा वगैरह बचता है, तो हम लोग छोटे छोटे थैले बनवा लेते हैं। थैले बनवाने के बाद में आए दिन जैसे हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ, जैसे पाँच अभी पर्यावरण प्रदूषण दिवस है, पाँच इसमें जून में था ये
जी जी,
तो हम लोग वहाँ पे वितरित करवाते हैं कि आप लोग पॉलीथीन छोड़ करके झोले का प्रयोग करो। फिर ये जो इसका गिलास जो होता है, ये फाइबर का गिलास होता है
जी,
इसको भी हम लोग हटाने का, इस भी एक जागरूकता कैंप के माध्यम से ये भी बताते रहते हैं कि इसको आप हटाओ, पॉलीथीन को मुक्त करो, देश समाज से हटा दो इसको, इस झोले का प्रयोग करो, मिट्टी के पात्र का प्रयोग करो। बहुत सारे जागरूकता का, अभी वृक्षारोपण का भी हम लोग कार्यक्रम करवाए हुए हैं, वॉल पेंटिंग का भी हम लोग का, वृक्षारोपण पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित वॉल पेंटिंग का भी हम लोग कार्यक्रम करवाते रहते हैं। तो इन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भी समाज को हम अलग अलग विषयों पर संदेश देते रहते हैं, ताकि लोग जागरूक हों और हमारे देश में जो पर्यावरण प्रदूषण का जो बोलबाला इतना बढ़ रहा है, इससे मुक्ति पाए।
यानी कहीं ना कहीं जो सामाजिक दिक्कतें आ रही होती है उसको लेके भी आपका ये स्टैंड होता है कि लोगों में जागरूकता भी आती रहे, और जहाँ पे हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए चीजें कर सकते हैं
जी,
तो उस तरह की भी आप प्रशिक्षण देते रहते हैं, जैसे आपने बताया दोना पत्तल इसका भी आप बताते हैं, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी मिले और कहीं ना कहीं हमारा नेचर भी बैलेंस रहे। ये बहुत अच्छी बात है। महिलाएं एक ऐसा समाज का हिस्सा है जिनके बिना इस समाज की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है, कह सकते हैं कि आधी दुनिया
जी जी।
लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो आप वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं उसमें हम पीछे पाते हैं कि महिलाओं को जो है वो पुरुष प्रधान जो समाज है हमारा, आज भी कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही है कि महिलाओं को कहा जाता है कि आप ये नहीं कर सकते हो
जी जी।
तो मुझे लगता है जो आपकी संस्था काम कर रही है
जी,
वो बहुत एक अहम रोल निभा सकती है इस काम को लेके कि महिलाओं के लिए भी स्पेशली कुछ ट्रेड्स चला के उनको स्वावलंबी बनाया जाए, उनको उनके पैरों पे खड़ा किया जाए। अगर महिलाओं के संबंधित कोई स्पेशल प्रोग्राम्स चलाते हैं तो प्लीज बताइए कि वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और उसमें क्या क्या होता है।
बेसिकली सर क्या है कि जो गोंडा जनपद है अपना, यहाँ पे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं, अब स्थानीय स्तर पे जैसे उनको हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेलर सिलाई का हमने उनको प्रशिक्षण दे दिया
जी,
तो उससे उनमें ज्यादा आय, उनका स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए आय की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक सिलाई मशीन उन्होंने ले लिया, 1,000-2,000 रुपए के अंदर ले लिया, और गांव में रह अपने घर में ही रह अगल बगल पास पड़ोस के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, जो भी हैं, उनके कपड़े अगर वो सिल देती हैं, तो इसे अगर उन्होंने दिन भर में 2 ब्लाउज सिल दिया तो 600 रुपए का उन्होंने काम, घर का काम भी किया प्लस 600 रुपए का काम और कर लिया। तो जब उनको आय होने लगती है तो उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है। गांव घर का कपड़ा सिलती ही हैं, इसके बाद में थोड़ा उनके प्रचार प्रसार होता है, अगल बगल का और काम शुरू कर देती हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर का हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, ब्यूटिशियन का देते हैं, क्योंकि अब ब्यूटिशियन का भी फैशन बढ़ गया। गांव में नगर हो चाहे शहर हो, हर जगह शादी ब्याह हो, फंक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, महिलाएं ब्यूटी पार्लर पे जाती हैं, अपना मेकअप कराती हैं। तो इससे भी हमारे यहाँ ड्यूरिंग ट्रेनिंग, अभी हम सर बताएं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग बच्चियां क्या करती हैं कि वो महिलाओं के बीच में जाती हैं, उनका भी उनके ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, दुल्हन का सजाना हुआ, मेकअप करना हुआ, वो ड्यूरिंग 1,000-2,000-4,000 रुपए एक लगन में शादी ब्याह में लेकर के वो चली आती हैं। जब वो उनको ड्यूरिंग ट्रेनिंग पैसे की लत लग, मतलब वो कमाने की लत नहीं सर, कमाने की जो पड़ जाती है, तो उनको अच्छा लगता है कि देखिए हम प्रशिक्षण ले रहे हैं और हमको 4 पैसे मिल भी रहे हैं, हमारी इनकम भी हो रही है, तो उनके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि उसको छोड़ते नहीं हैं, फिर अपने को आगे बढ़ाते, जैसे उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो अपने जॉब को आगे बढ़ाने के लिए वो काम किया करते हैं, उनके अंदर अच्छा इंटरेस्ट डेवलप देखा गया इस तरह।
ये तो आपने अच्छी बात कही कि ड्यूरिंग जब ट्रेनिंग उनको अर्निंग होती है तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट भी जगाता है
जी,
और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है उस काम को आगे करने के।
सर प्रयास भी है कि वो मतलब जैसे जो भी बच्चे हैं इस तरीके, बहुत सारे बच्चे दिखते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान ही उनको आए अगर वास्तव में होने लगे, कुछ नहीं सर, अगर उनको 50 ही रुपए अगर आय होने लगी तो उनका इंटरेस्ट अच्छा डेवलप होता है और वो काम भी करते हैं।
हाँ, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर,
कुछ होना बेहतर है।
और शुरुआत के दिनों में तो कुछ ही होगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते इंसान उसको बड़ा बना भी लेता है।
बिल्कुल सर, एक छोटा मोटा ट्रेनिंग जैसे इलेक्ट्रिकल का हम ट्रेनिंग ले लीजिए, देखा है उसमें क्या है, फैन रिबाइंडिंग का हुआ, जैसे हमारे यहाँ रिबाइंडिंग को उसमें देखा गया तो क्या है कि आपकी 100 रुपए लागत लगती है रिबाइंडिंग, फैन रिबाइंडेटर होता है, उसके रिबाइंडिंग आपने किया, उसमें वायर होता है कॉपर एल्यूमिनियम वायर, वो भी हुआ, आपने उसका जो स्क्रैप निकाला अभी मार्केटिंग बिक गया
जी,
100-150 रुपए की लागत लगी। अब आप रिबाइंडिंग फैन रिबाइंडिंग का 400-500 रुपया व्यक्ति ले लेता, 500 रुपया मैकेनिक लेता है, और आपकी लागत लगी 150 रुपया, और टाइमिंग लगे 2 घंटे, दिन भर में वो 4 पंखे 5 पंखे रिबाइंडिंग कर सकता, और डॉक्टर आपको सुलभ हो जाएंगे लेकिन मैकेनिक आपको सुलभ नहीं होंगे।
बिल्कुल सही बताया आप,
जान लीजिए
ये तो हमारी भी घर की प्रॉब्लम है,
आपको मैकेनिक सुलभ नहीं होंगे, आपको प्लम्बर की जरूरत पड़े, आपका पाइप टूट जाए, पानी लीकेज हो जाए, तो आप डॉक्टर तो मिल जाएंगे नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे, आपको इमरजेंसी में डॉक्टर कहीं नहीं तो कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन रात में प्लम्बर आपको मिलने वाला नहीं, लाइट आपकी फॉल्ट हो गई, अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो आपको इलेक्ट्रीशियन आपको मिलने वाला नहीं है।
सही कहा आपने।
तो इस तरीके से जो अपना इनका क्षेत्र होता है बहुत अहम होता है, और जो वास्तव में काम करते हैं बहुत अच्छे लगन से काम करते हैं, समाज में इनकी पहचान होती है, आय भी होती है, पहचान भी होती है।
ये बहुत अच्छी बात है। ये 2 चीज तो आपने बताया महिलाओं के लिए, इसके अलावा भी कोई चीज है क्या? एक तो आपने टेलरिंग का बताया, एक ब्यूटीशियन का बताया।
सर हाँ बिल्कुल है, इसे हमारे फल संरक्षण है, समय समय पर कच्चे माल की उपलब्धता होती है, जैसे इस समय आम का सीजन चल रहा है, आम का सीजन हुआ, कटहल का सीजन हुआ, ठंडी में गोभी हुआ, ये मिर्च हुआ, इन सब का भी वो उपयोग करते हुए ये फूड प्रिजर्वेशन फल संरक्षण का ये हुआ, इसका भी ये लोग काम करती हैं, करने के बाद में इनकी मार्केटिंग, चूंकि अच्छे अचार बन जाते हैं, अच्छे मसाले तेल वगैरह का भी बन जाता है, तो इनकी मार्केटिंग भी अच्छी हो जाती है, लोग खोजते हैं हम लोगों के पास, और हम लोग लगाते हैं क्या कहते हैं कहीं वो प्रदर्शनी वगैरह लगाते हैं, तो अपने जो उद्यमियों द्वारा प्रशिक्षित उत्पाद है उसको हम लोग रखते हैं, रखने के बाद में तो लोग लेके जाते हैं, इसके बाद में हम लोगों का फ़ोन नंबर लेते हैं, सर जरा हमको और चाहिए, मिर्चे का अचार चाहिए, आंवले का मुरब्बा चाहिए, कटहल का ये चाहिए, हम लोग पूछा करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं जो साप्ताहिक मार्केट लगती है, मार्केट लगती है तो एक जगह वो ले जा करके मार्केट में रख देता है, रखने के बाद में वहीं से अपना ले लेते हैं, हम लोग बताते हैं वहाँ आप जाइए, कहाँ के रहने वाले यहाँ, मार्केट में आप ले जा करके बेचिए। तो महिलाओं का एक SSG समूह भी हम लोग बनवा रखे हैं, स्वयं सहायता समूह भी बना हुआ है, महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी काम करती है, उनको भी बैंक से हम लोग लिंकेज कर दिए हैं, बैंक भी उनको सपोर्ट करता रहता है। अभी सर ये दुबहा बाजार में है एक कोमल स्वयं सहायता समूह है, तो वो दोना पत्तल का काम कर रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने उनको 5 लाख रुपए का आर्थिक सहायता भी दिया है, मशीन दिया है, वो अच्छा काम कर रही है। बढ़िया काम चल रहा है उनका।
बिल्कुल सही बताया आपने, इतने लोगों को प्रशिक्षण दिया है, जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे कुछ उंगलियों पे नाम भी आपके होंगे
जी,
जिनको आप बता सकते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ, तो किसी एक किसी का भी ऐसा एग्जांपल हमारे उदाहरण दीजिए श्रोताओं को कि पहले वो काम कर रहे थे उतनी अच्छी अर्निंग नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में वो आपसे प्रशिक्षण लेने के बाद कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बेहतर बना पाए।
ज्यादा देर से दूर नहीं, हम अपने गोंडा जनपद से सीमावर्ती से सटे हुए एक है पथवलिया जगह पड़ती है, एक विनय कुमार मौर्य एक लड़का था, वो परेशान रहता था, इधर उधर काम की तलाश में रहता था, क्या करें कैसे करें, तो हमने उसको जो है थोड़ा सा उसकी ट्रेनिंग करवाई, अपग्रेड उसको किया। वर्तमान समय में आज वो 15-20 बच्चों को रखा हुआ है, उसको रोजगार दिया हुआ है, स्वयं का तो काम उसका है ही है, 15-20 बच्चों को रोजगार दे रखा है, तो उसकी अच्छी इनकम, वो बहुत ही खुश है।
अच्छा, तो आपने ट्रेनिंग उनको किस चीज की दी थी और अभी वो क्या कर रहे हैं?
इलेक्ट्रिकल की हमने ट्रेनिंग दी थी।
हाँ।
तो इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग भी करते हैं, फैन रिबाइंडिंग का काम करते हैं, मोटर रिबाइंडिंग का भी, अब तो अपग्रेड हो गया, अब तो वो क्या नाम है आर्मेचर वगैरह बाइंडिंग का काम करता है, आर्मेचर बाइंडिंग करना, और धीरे धीरे हम लोग एक से और एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी करवाते रहते हैं। इससे हमने पहले होता हम लोगों में क्या होता था कि ये हम लोग ट्रेनिंग देते थे डीजल पंपिंग सेट मरम्मत का, तो डीजल पंपिंग सेट मरम्मत में होता तो गाँव में सिंचाई के लिए डीजल पंपिंग सेट होते थे, लोग वहाँ जाते थे, खराब होता था, बच्चे वहाँ बनाते थे। और फिर डीजल पंपिंग सेट शहर में आपके होते हैं, आप जानते हैं वो जो जनरेटर होते हैं
जी,
तो उन बच्चों को हमने डीजल पंपिंग सेट से साथ डायनमो की भी ट्रेनिंग दे दी, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे दी कि यदि आपके यहाँ जाए डीजल पंप सेट आपका वो जनरेटर खराब हो गया है और डायनमो में भी अगर कोई दिक्कत आ गई हो तो उसको भी ये रिपेयर कर दें।
ये अच्छा है,
ये भी कि हम लोग स्टाफ उनको एडिशनल ट्रेनिंग भी समय समय पर उनको कांटेक्ट में रहते हैं, जब हम लोग प्रशिक्षण के दौरान एक फॉर्म होता है जो आवेदन करवाते हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनका पूरा घर का एड्रेस होता है, पूरा लिए रहते हैं, उनसे पूछा करते हैं बाकायदा आप क्या कर रहे हो, कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आ रही है ट्रेनिंग करने के बाद में, आप रोजगार शुरू किए नहीं शुरू किए, क्या है कैसे है, हम लोग उनको अपग्रेड करते रहते हैं, दिक्कतों को दूर करते रहते हैं, बराबर उनसे संपर्क में बने रहते हैं।
बहुत अच्छी बात है। अभी जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को किस तरह से आप एडवांस की भी ट्रेनिंग दे देते हैं,
एडवांस ट्रेनिंग देते हैं,
यानी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जिसे आप बोल रहे हैं वो भी आप देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ आपने बखूबी सारे सवालों के जवाब दिए, जो भी हमने आपसे क्वेश्चंस किए उसका आपने बहुत ही सरलता और सहजता के साथ उत्तर दिया। हमारे साथ में मौजूद थे ब्रजेश पाठक जी, जिनसे हमने जाने की कोशिश की कि भाई ये इनकी संस्था काम क्या करती है, किन किन ट्रेड्स में काम कर रही है, कैसे कैसे काम होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसके बेनिफिशरीज बन सकते हैं, किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, किस तरह से प्रमोट करते हैं, किस तरह से ये मार्केटिंग करते हैं, किस तरह से लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, इन सारी चीज़ों पे बहुत ही आपने विस्तार से बात की, बहुत ही अच्छी बात है। अभी जाने से पहले एक बार फिर से आप हमारे श्रोताओं को ये बता दें कि अगर कोई इसमें अप्लाई करना चाहता है तो ऑनलाइन अगर दूर है तो वो कैसे करे, और अगर शहर के भीतर है तो आपके कहाँ सेंटर पर पहुँचे?
वो हमारे यहाँ गोंडा जनपद में मुख्यालय पर ही ये मालवीय नगर में गांधी पार्क है, वहीं दीनदयाल शोध संस्थान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, उसी का वहीं पे हमारा जन शिक्षण संस्थान का कार्यालय है, कार्यालय में आकर के वो संपर्क करेगा, उस वहाँ आवेदन फॉर्म उसको मिल जाएगा, आवेदन फॉर्म भर करके वो जमा कर देगा, जब भी हमारा प्रशिक्षण शुरू होगा उसका मोबाइल नंबर ईमेल नंबर होगा, हम लोग उसको सूचित कर देते हैं कि फला तिथि से प्रशिक्षण शुरू होने वाला है, आप आकर के अपना प्रशिक्षण शुरू कर दीजिए।
ठीक है, ये तो हुई ऑफलाइन की बात, ऑनलाइन भी कोई
माध्यम? ऑनलाइन भी हमारे वेबसाइट है, उसमें भी ऑनलाइन भी किया जा सकता है, जब प्रशिक्षण शुरू होगा, क्योंकि हम लोग अपने मन से प्रशिक्षण शुरू नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के गाइडलाइन होते हैं, वो भेजती है कि इन्हें अब आप प्रशिक्षण शुरू करो, अब जो हम लोग बना करके अपना भेजते हैं, एक्शन प्लान बना के भेजते हैं, वो अप्रूव्ड करती है और फिर वो डायरेक्शन देती है कि नहीं फला डेट से अपना प्रशिक्षण आप शुरू करिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं, फिर उनको सूचित करते हैं कि नहीं भैया अब आप आकर के अपना प्रशिक्षण आप शुरू करिए, फिर वो आकर के करते हैं, ऐसा भी करते हैं हम लोग।
ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे आप अगर काम कर रहे हैं तो उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन, आज का जो टॉक शो था, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपके लोगों के काम आएगी श्रोतागण, कहीं ना कहीं अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए करना चाहते हैं अप्लाई तो कर सकते हैं, अगर आपको महसूस होता है कि आपको भी ट्रेनिंग्स चाहिए तो आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दीनदयाल शोध शिक्षण संस्थान मालवीय नगर गांधी पार्क के बगल में जाके, वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बीच में ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने बखूबी हमारे सारे सवालों का उत्तर दिया। आप जाने से पहले हर गेस्ट से एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो आपसे भी हम करेंगे कि आप बैठे हैं देवी पाटन मंडल और गोंडा के पहले एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के स्टूडियो में। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में ये रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर या गोंडा के वासियों या जो इसके श्रोतागण हैं उनके लिए क्या वैल्यू ऐड कर रहा होगा, कितना बदलाव ला रहा होगा आने वाले टाइम में?
बहुत अच्छा है ये, जो अपने गोंडा जनपद में बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी ऐसा हुआ करती थी कि लोगों तक नहीं पहुँच पाती थी, आज आपके माध्यम से जो चीज़ें लोग नहीं जान पाते थे, नहीं सुन सकते थे, वो सुन रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं और समाज में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव जा रहा है। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश पाठक जी। और जैसा कि हमने आपके बारे में भी जाना, क्योंकि आप हमेशा से बचपन से ही कह सकते हैं कि समाज सेवा का एक जज्बा था, आज उसको कहीं ना कहीं कर रहे हैं और तन मन धन से लग के कर रहे हैं। और शायद सक्सेस के हम हमेशा कहते हैं कि मायने अलग होते हैं, किसी के लिए बहुत सारा धन दौलत ही सक्सेस होता है, तो किसी के लिए होता है कि नहीं दूसरे के चेहरे पर खुशी लाना, समाज में एक समानता लाना, एक खुशी की लहर दौड़ाना, ये होता है। और शायद आपका जो ये दूसरों के लिए करना होता है ये बहुत अहम होता है, बहुत बड़ी बात है। और ये जज्बा अगर लोगों में आ जाएगा तो समाज, नो डाउट हमारा जो समाज है भारतीय समाज, वो बहुत आगे जाएगा। और ऐसी हम कामना भी करते हैं कि आने वाले टाइम में इस तरह लोग जुड़ते रहें और इस तरह के कार्य करते रहें। तो एक बार फिर से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके काम के लिए।
धन्यवाद सर
जी। तो अपने श्रोताओं से हम बता दें कि ये थे हमारे बीच में ब्रजेश पाठक जी, जो कि असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, यानी एपीयू हैं हमारे। और जैसा कि उन्होंने बताया कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स के बारे में बहुत सारी आज जानकारी दी, उसके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला। एक बार फिर से हम सर का थैंक्स करेंगे और हम यही कहेंगे कि कल फिर सुनिएगा, किसी नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी, उनसे उनके बारे में और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में भी जानेंगे। सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
जब भी पहनिए कुछ खास पहनिए, आ गया है आपके अपने गोंडा शहर में साड़ी संसार, जो लेकर आता है आपके लिए सभी प्रकार के वैवाहिक एवं फैंसी साड़ियों का लेटेस्ट कलेक्शन, जिनमें शामिल है सलवार सूट, लहंगा चुनरी, लेगिंग जैगिंग, ब्लाउज, पैंट, कुर्ती, शरारा गरारा, सभी उचित मूल्यों में उपलब्ध हैं। पता है गांधी पार्क के सामने, हनुमानगढ़ी रोड निकट LPS चौराहा, मालवीय नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9936193619।
ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।